starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज हम ऑस्ट्रेलिया के लिबरल नेशनल गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो एक नए जनमत सर्वेक्षण के अनुसार विपक्षी नेता सूजन ले पिछले 23 वर्षों में सबसे कम लोकप्रिय नेता बन के उभरी है। ये सर्वेक्षण उनके और नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड के बीच लिबरल और नेशनल पार्टी के पुनर्मिलन के समझौते के एक दिन बाद आया है। द ऑस्ट्रेलियन द्वारा प्रकाशित एक नए न्यूज पोल से पता चलता है कि कोएलिशन का समर्थन ऐतिहासिक रूप से कम होकर 18% पर आ गया है और विपक्षी नेता सूजन ले पिछले 23 वर्षों में सबसे कम लोकप्रिय प्रमुख पार्टी नेता बन गई है। सूजन ले जनता की इस गहरी निराशा को स्वीकार करते हुए भी ये दावा कर रही है कि नवगठित कोएलिशन अंततः सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।
Polls are a point in time and they do reflect the fact that people are frustrated, people are angry. They want us to be a strong opposition and to be there for them, and I understand that. And most importantly, we are that in terms of the plans and the policies that we've already announced and that we have coming, particularly with migration policies to be announced soon, and so much more that demonstrates to the Australian people that we do have the answers that the Albanese government does not.
हालांकि लिबरल पार्टी की सेनेटर जेन ह्यूम आशावादी नहीं हैं। स्काई न्यूज से बात करते हुए सेनेटर ह्यूम ने हालिया जनमत सर्वेक्षणों को लिबरल पार्टी और कोएलिशन के लिए विनाशकारी बताया है।
This is disastrous for the Liberal Party. It's disastrous for the coalition. Unless something changes, we will be wiped out. I've been looking at the numbers, just running a ruler over the pendulum. And I don't think that at this point there will be a single member of the House of Representatives from Victoria. There won't be a single member of the House of Representatives from New South Wales. Something has to give. We had our lowest primary vote ever at the last election, and it's now nearly halved.
उन्होंने चेतावनी भी दी है कि तत्काल नीतिगत बदलाव के बिना पार्टी पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगी।
Don't for a second think that the next election will be in 2 years' time. Anthony Albanese is more wily than that. Why would you not call an early election if you knew that the coalition was in disarray? I would imagine that the next election will be in about 18 months' time. We need to claw back a lot of favor with the electorate in just in order to survive.
News poll के अनुसार National Party को प्राथमिक चुनावों में केवल 3% वोट मिल रहे हैं, जबकि One Nation Party को 27 वोट मिल रहे हैं। हालांकि Nationals Party के उपनेता Kevin Hogan का कहना है कि ये आंकड़े धोखा भी हो सकते हैं।
That's a really distorted figure, and why I say that is that figure comes across 150 electorates from around the country, and as Nationals, we only stand in about 20 to 30 seats, so we don't run in any city seats. There's a lot of cities we wouldn't poll at all. We'd poll zero in Wentworth, we'd poll zero in Coogong, we'd poll zero in Perth, because we don't stand candidates there. But where we have incumbent seats, like my seat or my Nationals colleagues, our primary vote obviously would be in the 40s or 30s, in some cases the 50s, because we're the incumbent, we're known there, the Nationals brand is known there. So the national polling figure is always a gross distortion for us.
महज तीन सप्ताह पहले हुए भीतरी मतभेद और विभाजन के बाद कोएलिशन एक बार फिर एकजुट होकर सामने आई है और ये नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड के पूर्व रुख से बिल्कुल उलट है जिन्होंने पहले एक स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी थी।
We cannot be part of a shadow ministry under Susan Lee.
ये विभाजन तब हुआ जब तीन नेशनल सेनेटरों ने शैडो कैबिनेट के नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकार के हेट स्पीच कानूनों के खिलाफ मतदान किया। नेशनल पार्टी के डेप्यूटी लीडर केविन होगन का कहना है कि उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए लिबरल और नेशनल पार्टियों के बीच एक निजी सुलह कराने का प्रयास किया था। हालांकि एबीसी रेडियो नेशनल ब्रेकफास्ट पर बोलते हुए होगन ने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे अभी भी उसी तरह मतदान करेंगे।
Well, I certainly would still vote the same in the chamber. I mean, we had a real view in our party room that legislation impinged on free speech in a way that we weren't comfortable. So we would certainly vote the same. That wouldn't have changed.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
फिलहाल हम देख रहे हैं कि पार्टी के प्रमुख नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वे सूजन ले पर पार्टी की बैठक बुलाने और उन्हें पद से हटाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व रक्षा प्रवक्ता एंगस टेलर लिबरल पार्टी के नेतृत्व के लिए सूजन ले को चुनौती दे रहे हैं। 11 फरवरी को इस्तीफा देते समय उन्होंने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की थी लेकिन गुरुवार को सुबह एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि की है।
तो सवाल ये उठता है कि बहुसांस्कृतिक समुदाय के मतदाता मुख्य राजनीतिक दलों से क्या देखना चाहते हैं।
मेरा नाम अपर्णा कुमार है, मैं मेलबर्न में रहती हूँ और यहाँ के निवासी हूँ कई वर्षों से। अभी जो पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया की पूरी हो रही है उसके लेके थोड़ा मेरा विचार ये है कि ऑपोजिशन में बहुत स्ट्रांग नहीं है कोई, और ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है जितना कि फर्स्ट बेंच पे बैठे जो लोग होते हैं, नेता होते हैं। इसलिए अभी लिबरल पार्टी को स्ट्रांग होना, उनका कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नेशन वाइड पे होना बहुत जरूरी है जो अभी तो नहीं दिख रहा है, और उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है जिसके चलते लोगों का उनके ऊपर विश्वास, उनका जो नेता है लोगों को वोट देने का, वो मुझे लगता है कि कम हो रहा है।
जी, मैं राजेंद्र पांडे विशुद्ध परिषद साउथ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। ये वास्तव में जो अभी हमने देखा है कि एंटी माइग्रेशन रैली हुई और इन सब कारणों की वजह से ये जनता में दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक असुरक्षा, एक असंतोष है जो वाइडर पॉपुलेशन है, और जो आम नागरिकों को जब ये महसूस होता है कि उनको अपना घर नहीं मिल रहे, हाउसिंग इश्यूज हैं, नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट और जो सामाजिक मुख्य धारा के जो लोग हैं, मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, उनको जब एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो स्पष्ट नहीं दिखते तो देखा जाता है कि वो जो ध्रुवीकरण होता है समाज में और ऐसे जो लाउड वॉइसेस होती हैं उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। डेफिनेटली एज अ वोटर और कमिंग फ्रॉम मल्टीकल्चरल कम्युनिटी और जैसे एक प्रवासी होने के नजरिए से ये हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, और ये बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे लोकतांत्रिक वैल्यूज है, मूल्य है, वो सम्मान हो, आप ही सम्मान बना रहना चाहिए और जो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहना चाहिए। हमें ये निश्चित करना होगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या ऐसी कोई जो डायलॉग है वो नफरत या डर या विभाजन पे आधारित ना हो। जो भी वायलेंस या रेसिज्म या किसी भी समुदाय को निशाना बनाना कभी भी फ्री स्पीच नहीं हो सकता। तो इसलिए एज अ वोटर मेरा मानना यह है कि और मेरी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हमारी कम्युनिटी के बिहाफ पे कि वो संयम बनाए अपनी भाषा में, एक स्थिरता दें, एक नेतृत्व दें हमारे समाज को, चाहे जिससे कि जो जो सब ऑस्ट्रेलियन हम लोग हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी बिलीफ या आस्था से आते हों, वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, एक सम्मानित उनको सम्मान भी मिले और उनको लगे कि हम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तो लोकतंत्र का जो मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, इसका अर्थ ये होता है कि लॉन्ग टर्म मतलब चुनाव तो मतलब कभी कभी होता है, लेकिन जो हमारा विश्वास और जो हमारा सामंजस्य है और जो हमारा फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी हमें रक्षा करना है। ये एक संदेश हमें पॉलिटिकल पार्टी से चाहिए जिससे कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति हमारे यहाँ खत्म हो।
वहीं मेलबर्न के रहने वाले सूर्या बताते हैं,
आज ऑस्ट्रेलिया में हाई इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग ने परिवारों का बजट हिला दिया है। किराया, ग्रोसरीज, बिजली पानी के बिल, फ्यूल, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। मध्यम वर्ग और कामकाजी परिवार अपने खर्चों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, युद्ध, व्यापार तनाव और सप्लाई चेन में बाधाएं, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। ऊपर से हाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो रही है, जिससे जॉब्स और स्मॉल बिजनेसेस पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में जरूरी है कि गवर्नमेंट और ओपोजिशन राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मिलकर काम करें। आम नागरिकों को राहत देने के लिए प्रैक्टिकल पॉलिसीज, टैक्स रिलीफ और टारगेटेड सपोर्ट की आवश्यकता है। साथ ही हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा। आने वाले महीनों और वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब मार्केट को तेजी से बदलने वाला है। ऑटोमेशन और एआई के कारण कई ट्रेडिशनल जॉब्स प्रभावित होंगे, इसलिए स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग प्रोग्राम्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर अभी से निवेश करना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता दूरदर्शी दिखाएंगे और ऐसी नीतियां बनाएंगे जो न केवल आज की मुश्किलें कम करें बल्कि आने वाले कल के लिए भी देश को तैयार करें।
SBS न्यूज से ब्रियाना चार्ल्स की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.